कितना टाइम लगेगा कैसे करेंगे।
हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविताष्णकरुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सबका स्वागत है इस बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव में। बलराम जी का आविर्भाव दिवस बलराम पूर्णिमा झूलन यात्रा का अंतिम दिवस और आज बाहर के लोग रक्षाबंधन भी मनाते हैं तो ये सारे उत्सव आज के दिन हैं। महत्वपूर्ण दिवस है और इन सब में महत्वपूर्ण है बलराम जी का आविर्भाव क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो कभी कभी ऐसी विचित्र लीलाएं करते हैं कि व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। हम सोचने लगते हैं ऐसा हो भी सकता है या नहीं, ये सत्य है या नहीं। हमेशा भगवान का जो प्राकट्य होता है ज्यादातर विवादित होता है और फिर कई लोग उसमें विवाद उत्पन्न करते हैं, कई लोग भगवान को नकारते हैं, कई लोग भगवान को मानते हैं, कोई भक्ति करते हैं कोई नहीं करते हैं। ऐसे सारे जगत में चल रहा है बहुत कम ऐसे स्थान हैं आज के समय में, कलयुग में, जहां सब भक्ति कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत कम ऐसे स्थान भी हैं जहां कोई भक्ति नहीं कर रहा। इसलिए दोनों चीजें चल रही हैं और ये सदैव चलता आ रहा है, सदियों से, युगों से। हम भगवान के भक्तों को भी देखते हैं और फिर अभक्तों को भी। असुर भी रहे हैं, सुर भी रहे हैं। तो ये असुर और सुर, इनमें भेद क्या है? अलग अलग समय में किन जीवों को, किन लोगों को असुर कहा जाता है? हम सब तो जब असुर शब्द सुनते हैं तो मन में विचार आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके दो सींग निकले हुए हैं, बड़े बड़े दांत हैं, हाथ में कुछ रस्सी तलवार लिए हुए है, काला भुजंग, यही एक असुर का चित्र आता है। लेकिन अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सुंदर असुर भी हुए हैं। रावण बहुत सुंदर था, और रावण का ही क्यों, महाभारत में हम लोग ले लें, बहुत सुंदर सुंदर असुर हुए हैं। तो इसलिए असुर की परिभाषा क्या है, इसको समझना चाहिए। किसे असुर कहना चाहिए, शास्त्र किसे असुर कहता है? असुर और सुर में, या असुर और देवताओं में, राक्षस और अच्छे मनुष्यों में एक ही अंतर है, और वो है भगवान की भक्ति। अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, धर्म का पालन नहीं कर रहा, शास्त्र के अनुसार वे असुर कहलाते हैं। लेकिन जो धर्म का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वे देवता या सुर कहलाते हैं। या साधारण शब्दों में अच्छे और बुरे की परिभाषा यही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत अच्छे हैं जीवन में और हम भक्ति नहीं करते, क्योंकि ऐसे अच्छेपन का लाभ क्या है? इसीलिए अगर अच्छा होना है तो उसे भगवान से जुड़ना होगा। और भगवान विवादों में रहते हैं, जैसे कृष्ण का जन्म, कृष्ण की लीलाएं बहुत विवादित हैं, लोग बहुत से विवाद उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही बलराम जी के विषय में भी कुछ लोग कुछ विवादों को प्रकट करते हैं, जैसे उनके जन्म को लेकर एक विवाद है। कहा जाता है, शास्त्रों में, भागवत में वर्णन है कि देवकी के गर्भ से, योग माया के प्रभाव से, बलराम जी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। अब तत्व की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, दिव्यता की दृष्टि से स्वीकार करें तो ठीक है। साधारण दृष्टि से कोई ये प्रश्न कर सकता है कि उस समय वसुदेव, वो तो मथुरा में थे, कंस के कारागृह में, और रोहिणी उनकी पत्नी गोकुल में थी, नंद महाराज के घर में, और फिर वहां से बालक उनके गर्भ में आ गया, तो ये कैसे हो सकता है? ये विवाद है। एक पत्नी का पति जो कहीं और हो और फिर उसी पति का गर्भ वो धारण करे, ये कैसे संभव है? तो आचार्यों ने इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाया। रोहिणी देवी ये वसुदेव की पत्नी है, और जिस समय वसुदेव और देवकी ये दोनों कारागृह में थे, बंद थे, तो वो कारागृह आज की तरह नहीं था कि जहां पर किसी को मिलने नहीं दिया जाता, कोई जा नहीं सकते, क्योंकि वसुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो वसुदेव का जो कारागृह था वो एक महल की तरह था, और रोहिणी देवी उनसे मिलने आया जाया करती थी। और ऐसे ही समय में वो रहती मथुरा में ही थी, तब गोकुल में नहीं रहती थी, मथुरा में रहती थी, वसुदेव जी से मिलने जाती, कुछ समय रहती, कुछ दिन रहती और फिर आया करती थी बाहर। तो ऐसे समय में जब वो गर्भवती हुई, तो गर्भवती होने के बाद कुछ समय बाद, कुछ महीनों के बाद, वसुदेव जी ने सोचा कि कंस हो सकता है रोहिणी को कष्ट दे, और इसीलिए उन्होंने रोहिणी देवी को गोकुल भेज दिया। तो जब रोहिणी देवी गोकुल में आई तो उस समय वो गर्भवती थी। और जब बलराम जी प्रकट हुए, वैसे कई आचार्य कहते हैं कि बलराम जी रोहिणी के गर्भ में ही प्रकट हुए, उनके केवल अंश देवकी के रूप में, देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। खैर जो भी हो, जब प्रकट हुए तो भगवान के आदेश से योग माया ने उनको स्थानांतरित किया। दूसरा विवाद, पहला विवाद उनके जन्म का है, तो ये स्पष्ट है जब रोहिणी देवी गई तब वो गर्भवती थी, इसीलिए वसुदेव जी के पुत्र कहलाए। दूसरा विवाद, कृष्ण और बलराम के जन्म का अंतर, कितना अंतर है? एक साल है, आठ दिन है, पंद्रह दिन है, कई साल हैं, क्या है अंतर? क्योंकि बलराम जी बड़े भाई हैं, तो कितने बड़े हैं? बलराम जी केवल आठ दिन बड़े हैं, बस। आज बलराम जी का आविर्भाव है, अगले शनिवार को कृष्ण का आविर्भाव है, बस इतना ही अंतर है, इतने ही बड़े हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। तो वे प्रकट हुए पूर्णिमा के दिवस पर और अष्टमी के दिन श्री कृष्ण प्रकट हुए। और ऐसे बताते हैं आचार्य की रोहिणी के गर्भ में बलराम जी करीब 14 महीने रहे, इसीलिए अंतर कम है कृष्ण और बलराम के जन्म का। तो ऐसे बहुत से विवाद हैं भगवान के जन्म, भगवान की लीलाओं में, लेकिन इन विवादों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है अगर हम आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलें, अगर हम आचार्यों की शिक्षाओं को ग्रहण करें। कोई विवाद नहीं है, केवल हमारे मन से विवाद उत्पन्न होते हैं। और जब बलराम जी प्रकट हुए, बलराम जी कौन हैं? चैतन्य चरितामृत में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि बलराम जी भी भगवान ही हैं, श्री कृष्ण का दूसरा देह है, बस। चैतन्य चरितामृत में बहुत स्पष्ट लिखा गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। एक ही स्वरूप है, वही कृष्ण है, केवल रंग का अंतर है, केवल काया का अंतर है। एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र काया। और क्यों लिया है बलराम जी ने ये स्वरूप? कृष्ण लीला र सहाय, कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए। तो बलराम जी हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं। आदि गुरु का अर्थ होता है जितने भी गुरु आते हैं वे सब के प्रमुख हैं बलराम जी, आदि हैं, सब उनसे आते हैं, इसलिए बलराम जी को आदि गुरु कहा गया। और भक्ति बिना गुरु के नहीं होती, बिना मार्गदर्शन के नहीं होती, भक्ति अपने मन से नहीं होती, भक्ति के लिए बल चाहिए, आध्यात्मिक बल, और ये बल देते हैं गुरु। और उन सब के बलों का, सारे गुरुओं के बलों का स्रोत हैं बलराम, आदि गुरु। इसीलिए अगर उनसे हम प्रार्थना करें तब फिर हमारे अंदर आध्यात्मिक बल आ सकता है जिससे हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। तो बलराम जी का जन्म आज के दिवस पर हुआ, ब्रज में हुआ, गोकुल में रोहिणी के गर्भ से, और फिर कृष्ण के जन्म की कथा तो आप सब जानते ही हैं। तो दोनों के नामकरण एक साथ हुए, गर्गाचार्य ने दोनों को नाम दिए। बलराम जी को नाम दिया राम या बलराम, राम जो सबको आनंद देंगे, बलराम जो बल से परिपूर्ण होंगे, संकर्षण जो दो परिवारों को एक साथ मिला देंगे, इसलिए उनका नाम संकर्षण हुआ। वैसे संकर्षण के और भी कई अर्थ हैं। तो गर्गाचार्य ने नाम दे दिए, दोनों बड़े होने लगे, कृष्ण और बलराम। हमेशा कृष्ण की रक्षा करते बलराम जी। वैसे भी बलराम जी कृष्ण की लीला के लिए सब कुछ बन जाते हैं। कृष्ण जो बांसुरी पकड़ते हैं वो बलराम जी का रूप है, कृष्ण जिस पर शयन करते हैं वो आसन भगवान का जो है वो बलराम जी का रूप है, कृष्ण जो कपड़े पहनते हैं वो बलराम जी का रूप है। कृष्ण की लीला में बलराम जी हर रूप में सहायता करते हैं, मित्र बनते हैं, भाई बनते हैं, और इतना ही नहीं माधुरी रस में एक मंजरी के रूप में भी कृष्ण के साथ लीला करते हैं। बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में प्रकट होते हैं। तो सब रूपों में भगवान के मित्र भी बनते हैं, भगवान के भाई भी बनते हैं, भगवान के प्रेमी भी बनते हैं बलराम जी, क्योंकि बहुत प्रेम है कृष्ण से। तो बलराम जी ये सबसे पहले विस्तार हैं कृष्ण के। कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं तो सबसे पहले बलराम जी आते हैं, उसके बाद फिर नारायण, विष्णु, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले बलराम, और फिर बलराम से चतुर्व्यूह आता है। चतुर्व्यूह अर्थात जिसमें वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकृष्ण इत्यादि चतुर्व्यूह, और फिर इनसे महाविष्णु आते हैं आगे चलकर, नारायण और नारायण से महाविष्णु, फिर महाविष्णु से आगे चलकर गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु इस जगत की रचना करते हैं। इसीलिए जान लीजिए कि जो भ्रांतियां, जो विवाद है कि विष्णु से कृष्ण आते हैं या विष्णु से भगवान बलराम आते हैं, ये सही नहीं है, शास्त्र स्वीकार नहीं करता। बलराम जी से विष्णु आते हैं और फिर विष्णु से आगे सारे अवतार आते हैं। तो सबसे पहला विस्तार है कृष्ण का। और जब बलराम जी आते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। ब्रज में उन्होंने बहुत सी लीलाएं की, बहुत से असुरों को मारा। जहां भी कृष्ण गए, कृष्ण के साथ में थे। कंस के वध के समय भी कृष्ण ने कंस का वध किया, कंस के बाकी सारे भाइयों का वध बलराम जी ने किया। ऐसे जितने जहां भी कृष्ण ने असुरों को मारा, बलराम जी साथ में थे। केवल कुछ समय एकाध लीला में बलराम जी साथ में नहीं थे। जैसे एक समय बलराम जी का जन्म दिवस था, तो कृष्ण जा रहे थे गाय चराने, रोहिणी माता ने बलराम जी को रोक लिया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम यहीं रुको, कुछ पूजा, कुछ यज्ञ इत्यादि करेंगे, तो बाकी सबको जाने दो। तो कृष्ण चले गए, और उस दिन बहुत सुंदर लीला हुई। उस दिन सारे बालकों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। ये ब्रह्म विमोहन लीला भी आज के ही दिन पर हुई थी, और आज के ही दिन के बाद ठीक एक वर्ष बाद वो सारे बालक जो ब्रह्मा जी उठा कर ले गए थे वो सब वापस आए थे। ये बड़ी सुंदर लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। हुआ ये था कि भगवान ने एक असुर का वध किया, अघासुर का, उसको मुक्ति मिल गई। सबने देखा कि वो भगवान के धाम चला गया, बड़ा आश्चर्य हुआ, सबने जाकर ब्रह्मा जी को बोला, अरे आपकी सृष्टि में क्या हो रहा है आपको पता है? ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो रहा है? अरे असुर भगवान के धाम जा रहे हैं, अघासुर जैसा पापी नीच असुर राक्षस वो भगवान के धाम चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा हो ही नहीं सकता, मेरे रिकॉर्ड में ऐसा लिखा नहीं है। ब्रह्मा जी के सारे रिकॉर्ड फेल हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सब जानते हैं इस जगत में क्या हो रहा है, पहले जीव हैं इस जगत के। लेकिन ब्रह्मा जी का रिकॉर्ड फेल हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो अनुमति नहीं दी, ये कैसे चला गया? तो सबने कहा कि नीचे जो कृष्ण हैं उनको लोग भगवान कहते हैं। तो ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देख कर आते हैं क्या ये भगवान हैं। ब्रह्मा जी आए अपने हंस वाहन पर, तो नीचे देखा कि सब बालक बैठे हैं, कृष्ण बीच में बैठे हैं और वे लोग सब खा रहे हैं भोजन। राजभोग का समय था 12 बजे का दोपहर का, और सब बैठकर खा रहे थे। गाय चरा कर थक गए थे, गायें भी कहीं बैठी हुई थी छांव में, बछड़े कहीं थे और ग्वाल बाल खा रहे थे, और सब ऐसे मिलकर खा रहे थे कि मानो बहुत निकट के मित्र हों। ब्रह्मा जी देख रहे हैं एक दूसरे के थाली में से लेकर खा रहे हैं, इतना ही नहीं एक दूसरे के मुख से खा रहे हैं, और वो कृष्ण जिनको भगवान कहा जा रहा है वो दूसरों का झूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान को कभी झूठा खिलाया जाता है? ऐसा होता है कि कभी कभी किसी ने खिलाया भगवान को झूठा? आज तक याद है आपको कहीं? शबरी ने, बहुत अच्छा, तो शबरी ने खिलाए थे। वैसे साधारणतः भगवान को झूठा नहीं खिलाया जाता। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये कौन भगवान है, जरा सा बालक, छोटा सा बालक। तो उन्होंने सोचा परीक्षा लेते हैं, अगर ये भगवान है तो इसकी परीक्षा लेनी होगी। तो उन्होंने सारे जो बछड़े थे उनको चुरा लिया। उस समय भगवान बछड़े चराया करते थे, तो सारे बछड़ों को चुरा लिया। और जब बछड़े गायब हो गए तो सब मित्र सोचने लगे बछड़े वहां बैठे थे कहां गए, बछड़े नहीं दिख रहे। तो कृष्ण ने कहा आप सब चिंता नहीं करो, आप यहीं बैठो सब लोग, मैं जाता हूं, आप आराम करो। तो कृष्ण चले गए बछड़े लेने, ब्रह्मा जी ने सारे बच्चों को भी चुरा लिया। देखिए ब्रह्मा जी भी चोरी करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिया सारे बच्चों को और ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। तो बच्चे चले गए, बछड़े चले गए, कृष्ण आए देखा अरे कोई नहीं है, तो कृष्ण तो भगवान है अंतर्यामी, वो जान गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही स्वरूपों को प्रकट किया, वही बालक वही बछड़े लेकिन वो सब कृष्ण, अर्थात कृष्ण ने रूप ले लिया बछड़ों का बालकों का। और ब्रह्मा जी तो चले गए। अब ब्रह्मा जी जब तक जाएं और वापस आएं इस पृथ्वी पर एक वर्ष चला गया, और उस एक वर्ष तक उस दिन शाम को जब ये लीला हुई सब बच्चे वापस आए, बछड़े वापस आए, तो उस दिन सारी माताओं को सारे पिताओं को सारी गायों को अपने बछड़े अपने बच्चे बड़े अच्छे लग रहे हैं, इतना प्रेम कभी नहीं था। आप जानते हैं ब्रज में लोग अपने बच्चों से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करते हैं, आज भी करते हैं पहले भी करते, उस समय तो सब कृष्ण को प्रेम करते थे, लेकिन आज सबको बहुत ज्यादा प्रेम अपने बच्चों से हो रहा है। गायें अपने बछड़ों को चाट चाट कर प्रेम प्रकट कर रही हैं, इतना प्रेम उमड़ रहा है, क्योंकि आज जो बच्चे थे आज जो बछड़े थे वो उनके बच्चे और बछड़े नहीं, वो कृष्ण थे। तो ऐसे ब्रह्मा जी गए और वापस आए। तो फिर बलराम जी नहीं गए थे उस दिन, क्योंकि बलराम जी जाते तो बलराम जी तो मोहित नहीं हो सकते थे ब्रह्मा जी से, सारे बच्चों को तो उठा के ले गए, अगर बलराम जी को ले जाते तो शायद गुस्से में आके चार में से तीन सर तो तोड़ ही डालते बलराम जी ब्रह्मा जी के, तो इसीलिए बलराम जी उस दिन नहीं गए थे। तो सारे बच्चे चले गए। तो फिर बलराम जी देखा करते थे बलराम, और बलराम जी को भी कृष्ण ने नहीं बताया कि ये सब क्या हुआ है। तो बलराम जी देखते थे कि ये माताओं को अपने बच्चों से इतना प्रेम हो रहा है, गाय अपने बछड़ों को छोड़ती ही नहीं है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो बलराम जी सोच रहे थे कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है, ये कृष्ण ने कुछ तो किया है, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। अब फिर एक वर्ष बीत गया और ब्रह्मा जी केवल गए बच्चों को रख कर वापस आए, तब तक एक वर्ष बीत गए। और ब्रह्मा जी ने क्या देखा वापस आकर, सारे बच्चे वैसे ही हैं, सारे बछड़े वैसे ही हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा अरे मैंने तो चुरा लिए थे, यहाँ कैसे आ गए। और फिर से कृष्ण ने उनको अपना चतुर्भुज रूप, वो सारे बच्चे जो थे वो चतुर्भुज नारायण में बदल गए, सारे बछड़े सारे बच्चे। और तब ब्रह्मा जी को पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, किसकी परीक्षा लेनी चाहिए मैंने। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग भी जीवन में भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं, मैं देखता हूँ भगवान मेरे साथ ऐसा करते हैं या नहीं। भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो सही करते हैं। हमारे जीवन में जो भी होता है वो एकदम सही है, भगवान कभी गलत नहीं करते, भगवान कभी अन्याय नहीं करते। ये गलत धारणा है लोगों में कि भगवान न्याय करते हैं, दंड देते हैं, कोई गलत कार्य करता है पाप करता है तो भगवान दंड देते हैं, नहीं देते। लोग डराते हैं अगर आप ऐसा करोगे तो भगवान दंड देंगे, नहीं देंगे। भगवान दंड नहीं देते, केवल प्रेम देते हैं, कृपा देते हैं। दंड तो हमें भौतिक प्रकृति से मिलता है हमारे कर्मों के अनुसार, भगवान दंड नहीं देते। जब कोई भगवान के पास जाता है तो भगवान केवल कृपा देते हैं। तो इसीलिए ऐसी धारणाएं लोगों ने बनाई हुई हैं कि भगवान हमें दंड देते हैं, भगवान अन्याय करते हैं, भगवान क्रूर हैं। और लोग प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान क्रूर नहीं है तो बताइए इतने सारे लोग सुनामी में मारे जाते हैं, छोटे बच्चे मारे जाते हैं, भूकंप आता है बच्चे मारे जाते हैं, महिलाएं मारी जाती हैं, पुरुष मारे जाते हैं, वो तो सारे अच्छे लोग होते हैं, प्लेन क्रैश हो जाता है उसमें मर जाते हैं। अभी पिछले साल एक प्लेन गायब हुआ, पता ही नहीं चला आज तक कहाँ गया, पूरा का पूरा प्लेन गायब हो गया, पता नहीं अब शायद पता चला होगा। तो लोग कहते हैं कि ये जो भूकंप होता है, सुनामी होता है, जिनमें मासूम बच्चे मारे जाते हैं, क्या भगवान क्रूर नहीं है? क्या इन इन आपदाओं के द्वारा, इन विपदाओं के द्वारा क्या वो क्रूरता नहीं प्रकट कर रहे? क्या रोक नहीं सकते थे भगवान? उनमें शक्ति नहीं है? चाहते तो रोक देते सुनामी को, चाहते तो रोक देते भूकंप को, बाढ़ को, सूखे को, किसी को भी रोक सकते हैं, फिर क्यों नहीं रोकते हैं भगवान? तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो उनमें शक्ति नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, वो भगवान है, शक्ति होनी चाहिए, तो फिर दूसरी बात वो क्रूर हैं, उनमें प्रेम नहीं है, कृपा नहीं है, दया नहीं है, और इसीलिए वे ऐसी चीजों को करते हैं। नहीं, ये गलत धारणा है। भगवान तो इसमें इन चीजों को स्पर्श भी नहीं करते, ना वो सुनामी लाते हैं, ना वो बाढ़ लाते हैं, ना वो सूखा लाते हैं, ये तो केवल प्रकृति करती है। भगवान तो केवल आते हैं, ब्रज में जन्म लेते हैं, लीलाएं करते हैं, चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी चाही, तो ब्रह्मा जी को समझ में आया, तो वो भी बलराम जी के आविर्भाव का दिवस था। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं ब्रज में बलराम जी ने की, हमेशा रक्षा करना कृष्ण की। आगे चलकर बलराम जी ने विवाह किए, बलराम जी का विवाह हुआ रेवती से, रेवती देवी। ये भी बहुत सुंदर लीला है उनके विवाह की। ऐसा हुआ कि सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था रेवत, और उनकी एक पुत्री थी, बहुत सुंदर पुत्री रेवती। ये सतयुग की बात है, बलराम जी अभी प्रकट हुए हैं द्वापर में, सतयुग की बात कर रहे हैं। तो वो राजा सोच रहे थे कि मुझे अपनी पुत्री के लिए योग्य वर चाहिए, ये इतनी सुंदर है और मैं इतना बड़ा राजा हूँ, जो भी इसके लिए योग्य वर हो। उन्होंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं कोई योग्य वर। तो फिर वो चले गए ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने सोचा जाके ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मेरी बेटी के लिए कौन सा योग्य वर है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास तो सब रिकॉर्ड है कौन कहाँ क्या होगा। तो जब वो गए ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मा जी थोड़े व्यस्त थे, मिल नहीं पाए। थोड़ा समय वो बाहर खड़े रहे और फिर जब ब्रह्मा जी से मिले तो ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि नीचे बहुत सारे राजा हैं पृथ्वी पर, ये हैं इत्यादि बहुत सारे नाम बताए, तो आप बताइए कौन मेरी पुत्री के लिए सही है, योग्य है। ब्रह्मा जी ने कहा, रेवत महाराज, आप जब ऊपर आए ब्रह्मलोक में और थोड़ी देर खड़े रहे, इतनी देर में नीचे लाखों साल निकल गए हैं पृथ्वी पर। तो रेवत ने कहा, क्या? बोले, हाँ, ना आपका राज्य है ना कुछ, लाखों साल चले गए। और वो जब राजा जिनके नाम आप कह रहे हैं वो तो कब के मर चुके हैं। तो रेवत ने कहा, अब क्या करें, हमारी पुत्री का विवाह करना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक ही योग्य वर है, और योग्य नहीं, वो बहुत योग्य है। और कौन है? बलराम। तो जाओ नीचे और बलराम जी से इसका विवाह करो। तो रेवत आए, रेवती भी आई। अब देखिए, जब सतयुग में लोग होते थे वो बड़े लंबे हुआ करते थे, बहुत लंबे लोग थे। आप जानते हैं सतयुग में लोगों की जो कद होता था बहुत ऊंचा होता था, फिर धीरे धीरे त्रेता में कम हो गया, द्वापर में और कम हुआ, कलयुग में और कम, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा और कम होता जाएगा। तो सतयुग की थी रेवती, बहुत लंबी थी, बलराम जी द्वापर के छोटे थे। तो रेवत लेकर आए और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा है आपसे विवाह करना है। बलराम जी ने ऐसे देखा बहुत लंबी थी रेवती, अब कैसे विवाह करें। तो बलराम जी ने अपना हल लिया, हलधर नाम है उनका, हल धारण करते हैं, तो हल लिया, रेवती के कंधों पर रखा और जोर से खींच दिया, रेवती उनके बराबर हो गई, लेवल में आ गई। और फिर उन्होंने कहा अब शादी करेंगे, पहले नहीं, ऐसे इतने ऊपर कहाँ बलराम जी देखते रहेंगे ऊपर। तो इसलिए ऐसे रेवती से उनका विवाह हुआ बलराम जी का। और बलराम जी ने महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल आज हम लोग एक स्तोत्र पढ़ने वाले हैं अभी कुछ ही देर में, बलराम जी की प्रसन्नता के लिए। और ये स्तोत्र की शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण नाम से हुई है। कोई आप लोग गेस कर सकते हैं, कोई अनुमान लगा सकते हैं किस नाम से बलराम जी के स्तोत्र की प्रारंभ हुआ होगा? कोई भी, किस नाम से प्रारंभ होगा बलराम जी का स्तोत्र? पहला नाम कोई? हाँ जी, आदिशेष? नहीं, किसी किसी, चलिए बताते हैं, किसी व्यक्ति का नाम है। अच्छा, भगवद गीता की शुरुआत किस नाम से हुई है ये तो पता होगा, भगवद गीता का पहला शब्द क्या है? हाँ, संजय? नहीं, कौन सा पहला शब्द, पहला श्लोक का पहला शब्द भगवद गीता की शुरुआत? अरे रे, आप लोगों को सबको भगवद गीता पढ़ानी पड़ेगी। हाँ, हाँ, धर्म क्षेत्र के पहले पहला शब्द? नहीं, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, तो पहला भगवद गीता का प्रारंभ का पहला शब्द है धृतराष्ट्र उवाच, फिर धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो देखिए, भगवद गीता जैसे ग्रंथ का प्रारंभ हुआ धृतराष्ट्र के नाम से, और बलराम जी के स्तोत्र का प्रारंभ होगा, हाँ, रोमहर्षण? नहीं, कोई गेस कीजिए, हमने आपको हिंट दे दिया। हाँ, जोर से, धृतराष्ट्र नहीं, चलिए बता देते हैं, ज्यादा सस्पेंस नहीं। भगवत गीता का प्रारंभ हुआ धृतराष्ट्र से और बलराम जी के स्तोत्र का प्रारंभ होता है दुर्योधन से। इस स्तोत्र प्रारंभ होता है दुर्योधन उवाच, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे थोड़े समय में। तो बलराम जी ऐसे उन्होंने लीलाएं की, तो महाभारत में भी बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। समय आज कम है इसलिए काम करेंगे, स्तोत्र को पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते बीच में कुछ लीलाओं का स्मरण करेंगे। तो आप सब थोड़ा सा घूम सकते हैं स्क्रीन की तरफ, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। ये बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र है, इसका नाम है श्री बलभद्र स्तवराज। थोड़ा लाइट्स कोई बंद कर दें आगे की, वहां से भी लाइट्स थोड़ी बंद हो ताकि क्लियर दिखाई दे। बस पीछे नहीं, वहां की रहने दीजिए, बस ये वाली आगे की बंद कीजिए, ज्यादा लाइट्स। तो इस स्तोत्र को आप सब दोहराएंगे इसको देखकर, जैसे जैसे हम बोलेंगे, ताकि हाँ बस बस ठीक है ठीक है। तो बलराम जी का स्मरण भी हो जाएगा। आप सबसे विनती है कोई बातें नहीं करें, बड़े ध्यान से स्तोत्र को स्मरण करें। तो ये श्री बलभद्र स्तवराज। नेक्स्ट, दुर्योधन वाच, थोड़ा से जोर से बोलिए। दुर्योधन ने बोला इसलिए आप लोग धीरे बोल रहे हैं, अच्छा नहीं है, थोड़ा जोर से बोलिए। दुर्योधन उवाच, स्तोत्रं श्री बलदेवस्य प्राद्विपाक महामुने वद्मां कृपया साक्षात् सर्वसिद्धि प्रदायकम्। इसका अर्थ है दुर्योधन ने कहा स्तोत्रम श्री बलदेवस्य प्राद्विपाक महामुने, हे महामुनि प्राद्विपाक, हमें बलदेव जी के स्तोत्र को बताइए। वदमाम मतलब हमें बताइए, कृपया कृपा करके बलदेव जी के स्तोत्र को बताइए जो सर्व सिद्धि प्रदायकम, सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाला स्तोत्र है, ऐसा स्तोत्र हमें बताइए। श्री प्राद्विपाक उवाच, स्तवराजं तु रामस्य वेदव्यास कृतं शुभम्, सर्वसिद्धिप्रदं राजन्, शृणु कैवल्यदं नृणां। प्राद्विपाक मुनि ने कहा, स्तव राजन तु रामस्य, हे राजन अर्थात हे दुर्योधन, रामस्य अर्थात बलराम जी के स्तव को आप सुनिए। स्तव राजन तु रामस्य वेद व्यास कृतम शुभम, किसने इसकी रचना की है? वेद व्यास ने इसकी रचना की है, इसलिए बड़ा शुभ है। सर्व सिद्धि प्रदम राजन, सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। शृणु कैवल्यदम ऋणाम, और इतना ही नहीं, जो इसको सुनता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये स्तोत्र है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। देवादिदेव भगवन् कामपाल नमोस्तुते, नमोनंताय शेषाय, साक्षात रामाय ते नमः। बलराम जी का गुणगान है, हे देवादि देव भगवान, हे भगवान जो देवों के भी आदि हैं, देवों, जो देवों को प्रकट करते हैं, देव आदि देव, जो सबसे जिनसे सारे देवता आते हैं, कामपाल नमस्तुते, जो सारी इच्छाओं को कामनाओं को पूर्ण करते हैं, ऐसे अनंत नमो अनंताय शेषाय, ऐसे अनंत ऐसे शेष साक्षात रामाय बलराम जी को नमस्कार है। धरा धराय धरा धराय पूर्णाय स्वधामने शिरपाणये सहस्रशिरसे नित्यं नमः संकर्षणायते। तो यहाँ संकर्षण जी का गुणगान है, धरा धराय पूर्णाय। हे भगवान, आप धरा अर्थात धरती को धराय धारण करते हैं। तो संकर्षण जो है वो अपने फणों पर केवल धरती को नहीं, सारे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। धरा धराय पूर्णाय, और आप परिपूर्ण हैं, आप में कोई कमी नहीं है। स्वधामने सिर पाने, पाने मतलब हाथों में, सिर यानी गधा, जो गधा और हल, हल को धारण, जैसे सिर ये सीत जो होता है हल को कहते हैं, इसीलिए सीता नाम पड़ा था क्योंकि वो हल के कोने से प्रकट हुई थी। तो सिर पाणये सहस्त्र शिर से नित्यम नमः संकर्षणायते, और आपके सहस्त्र शिर अर्थात बहुत से फण हैं और आप नित्य उनसे भगवान का गुणगान करते हैं, ऐसे संकर्षण को हम प्रणाम करते हैं, नमः संकर्षणायते। ये वाली लाइट्स भी बुझा सकते हैं जो बीच में जल रही हैं। हाँ जी ठीक। तो आगे रेवती रमणं त्वं वै बलदेवाच्युताग्रज हलायुत्प्रलम्भग्न पाहि मां पुरुषोत्तम। रेवती रमणं त्वं वै, तो यहाँ पर रेवती के विवाह का वर्णन हो रहा है, जिसका हम वर्णन कर चुके हैं कि बलराम जी ने रेवती से विवाह किया। बलदेव अच्युत अग्रज, भगवान के अग्रज बड़े भाई हैं, हलायुत उसको स्पर्श नहीं करे कोई वहां पर, हलायुत प्रलंबग्न, हलायुत मतलब जो हल को धारण करते हैं, हल को उन्होंने आयुध अर्थात अपना हथियार बनाया है, प्रलंबासुर प्रलंबग्न, प्रलंबासुर को जिन्होंने मारा। तो ये बहुत बहुत सुंदर लीलाएं हैं, अभी बहुत सी आएंगी बलराम जी की। बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया था, बहुत बड़ा असुर था, तो बलराम जी ने उसको केवल अपने हाथों से मार डाला था। पाहि मां पुरुषोत्तम, तो ऐसे पुरुषोत्तम भगवान की हम रक्षा के लिए पुकारते हैं। बलाय बलभद्राय तालंकाय नमो नमः नीलांबराय गौराय रोहिणीयाय ते नमः। बलाय बलभद्राय, सारे जितने बल हैं वो बलभद्र से आते हैं, बलराम जी से आते हैं, और बलराम जी नीलांबर धारण करते हैं, नीले वस्त्र बलराम जी को बहुत प्रिय हैं नीले वस्त्र। तो नीलांबराय गौराय, और बहुत गौरा वर्ण है, रोहिणी आय ते नमः, जो रोहिणी के पुत्र हैं ऐसे बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं। धेनुकारिर्मुष्टिकारिकूटरीर्बल्लवान्तक रुक्म्यारिः कृपकर्णारिः कुम्भधारिस्त्वमेव हि। अहंकारिर मुष्टिकारी। बलराम जी ने कई असुरों का वध किया जिनमें से एक था धेनु का असुर, इसीलिए धेनुकारिर। ये धेनु का असुर ताल वन में रहता था और वहां पर ताल के वृक्ष थे, उनकी रक्षा करता था। उनसे एक बहुत स्वादिष्ट पेय निकलता था, उसको कंस के लिए भेजा करता था। तो एक दिन सारे बच्चों ने कहा कि हमें ताल के वृक्ष के जो फल हैं, ताल फलों को खाना है। तो कृष्ण बलराम ने कहा ठीक है जाएंगे। तो फिर वहां पर गए, धेनु का सुर था। जानते हैं धेनु का कौन से रूप में था? हाँ, धेनु का, हाँ, धेनु किसको कहते हैं? और मुष्टिकारी, मुष्टि मतलब मुष्टिक, चाणूर और मुष्टिक का वध किया था बलराम जी ने। कृष्ण ने किनको मारा था? चाणूर को, और मुष्टिक को मारा था बलराम जी ने। तो ऐसे इन लीलाओं का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। आगे, कालिंदी भेद नोसी त्वं हस्तिनापुर कर्षकः विविदारिर्यादवेन्द्रो ब्रजमंडलमंडनः। कालिंदी अर्थात यमुना। एक समय बलराम जी रासलीला कर रहे थे, कृष्ण ने रासलीला की और बलराम जी ने भी की, लेकिन कृष्ण ने जिन गोपियों के साथ रासलीला की वो अलग हैं और बलराम जी ने जिनके साथ की वो अलग हैं। तो एक समय बलराम जी रासलीला कर रहे थे, बलराम जी यमुना में स्नान करना चाहते थे, तो उन्होंने यमुना को बुलाया, लेकिन यमुना ने सोचा कि ये तो शराब पिए हुए हैं, नशे में हैं, इनके पास नहीं जाना चाहिए। तो यमुना गई नहीं, और फिर बलराम जी ने क्रोध में आकर अपने हल से यमुना के 100 भाग करने शुरू कर दिए। और फिर यमुना घबरा कर वो प्रकट हुई बलराम जी के सामने, और उन्होंने बड़ी प्रार्थना की बलराम जी से, राम राम महाबाहो न जानाती तब विक्रमः, कि हे राम, ए महाबाहो, आपके विक्रम को, आपके जो शक्ति है उसको मैं भूल गई थी, क्षमा कर दीजिए। तो फिर ऐसे क्षमा किया। और हस्तिनापुर कर्षकः, ये एक नाम है बलराम जी का, हस्तिनापुर कर्षक। आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं, बलराम जी को जब एक समय क्रोध आया था, उन्होंने जाकर कौरवों को कोई बात कही, विवाह की बात थी, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो उस समय बलराम जी ने गुस्से में आके अपने हल से सारे हस्तिनापुर को खींचना शुरू कर दिया और कहा कि खींच कर इसको यमुना में बहा दूंगा। और देखिए, आप चित्र देख रहे हैं, बलराम जी आगे आगे हल लेकर चल रहे हैं, पीछे सारा हस्तिनापुर खींच रहा, लोग परेशान हो गए। फिर सबने प्रार्थना की तो बलराम जी ने छोड़ दिया। द्विविध आरिर, उन्होंने एक द्विविध नामक असुर का भी वध किया था। ब्रजमंडल मंडन, जो ब्रज के मंडल के अभिभूषण हैं। नेक्स्ट, कंस भ्रात्रे प्रहंतासी तीर्थ यात्रा कर प्रभु, दुर्योधन गुरु साक्षात पाहि पाहि प्रभो तत। कंस भ्रात्री, कंस के भाइयों को मारा था, कंस को कृष्ण ने मारा, लेकिन बाकी सारे भाइयों को बलराम जी ने मारा था, इसीलिए ने कंस भ्रात्री प्रहंतासी कहते हैं, कंस के भाइयों को मारने वाले। बहुत सुंदर लीला थी, कृष्ण बलराम जब कंस के पास गए तो कंस ने बड़ी व्यवस्था की थी कैसे इन दोनों को मार डालें, लेकिन फिर इन्होंने चाणूर मुष्टिक को मारा और फिर कंस को भी मारकर उसके सारे भाइयों को, सैनिकों को, सबको नाश किया। तीर्थ यात्रा कर प्रभु, बलराम जी युद्ध के समय जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय वो तीर्थ यात्रा पर चले गए और उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। और दुर्योधन गुरु साक्षात, दुर्योधन को उन्होंने गदा चलाना सिखाया था, ऐसे बलराम जी को हम शरण जा रहे हैं। अब ये 10वां श्लोक और इसके बाद 11वां श्लोक इसका फल बताएगा कि इसको पढ़ने से क्या होता है।
जय जय अच्युत देव परात्पर, स्वयं अनंत दिगनंत गत श्रुत, सुर मुनीन्द्र भनेन्द्र चरायते, मुसलिने बलिने हलिने नमः।
भगवान का गुणगान है, हे भगवान आपकी जय जयकार है। देव परात पर, जो भी बलराम जी की शरण जाता है तो फिर वो बहुत आसानी से इस जगत को पार कर जाता है। स्वयं अनंत दिग अंतगतः श्रुतः, अंत में वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। सुर मनिन्द्र मुनिन्द्र, जितने भी देवता हैं, जितने भी मुनि हैं इत्यादि, ये सब बलराम जी को प्रणाम करते हैं। और बलराम जी ने बहुत सारी जो लीलाएँ की, अलग अलग उनके नाम हैं। और अब अंतिम श्लोक जो इसका फल बताता है।
यः पठेत् सततं स्तवनं नरः, स तु हरे परमं पदमाव्रजेत। जगति सर्वबलं तोरिमर्दनम्, भवति तस्य धनं स्वजनं धनं।
यह पठे, जो इसको पढ़ता है, सततम सतत जो इसका पाठ करता है, सतु हरे परमं पदम आव्रजे, वो भगवान श्री हरि के परम पद अर्थात वैकुंठ को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। और जब तक इस जगत में रहता है, जगति सर्वबलम, सारे बल उसको प्राप्त होते हैं। और अपने शत्रुओं का तो अरिमर्दनम, वो नाश करता है। भवति तस्य धनम स्वजनम धनम, और अंत में उसको असली धन की प्राप्ति होती है, जो है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री बलराम जी की जय। गौर प्रेमानंदे।
तो अभी बलराम जी के इस चित्र को देखते हुए थोड़ा कीर्तन करेंगे, और कीर्तन करते करते भगवान श्री राधा और कृष्ण झूले पर विराजमान होंगे, और अभी थोड़े ही समय में आरती भी होगी। तो आइए 5 मिनट के लिए कीर्तन करें, बलराम जी का स्मरण करें, और ये कीर्तन बलराम जी को समर्पित करें। केवल 5 मिनट, और उसके बाद आरती प्रारंभ होगी।
हरे कृष्णा। भगवान आरती के लिए तैयार हैं, तो अभी आरती होगी। उसके पहले कुछ सूचनाएं हैं, कृपया इन सूचनाओं को आप सुनिए ध्यान से। आप सबसे एक विनती है कि जन्माष्टमी का उत्सव बहुत निकट आ गया है, और कल सुबह, कल रविवार है, आप सबको छुट्टी है, तो कल सुबह हम लोग इस पूरे मंदिर को साफ करने के प्रयास कर रहे हैं। और आप सबसे विनती है कि आप सब भी आकर इसमें भाग लें। ये मंदिर, यहाँ हॉल, बाहर सब सुबह ठीक 10 बजे से प्रारंभ होगा, और शाम के समय में सब भक्त बाहर कीर्तन के लिए भी जाएंगे। तो आप सबसे विनती है कि आप कृपया आकर भाग लीजिएगा। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का आज के पावन दिवस पर, बलराम जयंती के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण महाप्रणय संघ के इस कारोबार केंद्र में हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस दिन आप यहाँ पर आए और आकर के इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके लिए हम तीन बार हरि बोल बोल के आपका जोर से स्वागत कर लेंगे। कल आप सभी को पता है कि इस मंदिर में हर सप्ताह साप्ताहिक रविवार एक फीस्ट होता है, रविवार एक कार्यक्रम होता है, तो उसका जो समय होता है 12:30 बजे से। पर कल थोड़ा सा उसमें कुछ भक्त अगर आना चाहें तो उनके लिए वो लोग जल्दी आ सकते हैं 9:30 बजे से। जैसा प्रभु जी ने बताया सेवाएं रहेंगी महामंदिर मार्जिन की, पूरे मंदिर का मार्जिन होगा कल, तो जो भी भक्त उसमें आना चाहें वो 9:30 बजे से आ सकते हैं। बाकी जो रविवार का कार्यक्रम होगा वो 12:30 बजे से प्रारंभ होगा दोपहर में। उसके साथ साथ शाम को 3:30 बजे से नगर संकीर्तन का के लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग नगर संकीर्तन के लिए यहाँ से जाएंगे और सभी पूरे कारवार वासियों को जगन्नाथ सॉरी जन्माष्टमी का जो दिवस है उसका इनविटेशन देने के लिए यहाँ पर आए और प्रोग्राम अटेंड कर सके। तो आप में जो भी भक्त हम लोगों के साथ चलना चाहते हैं जन्माष्टमी के लिए, तो कल नगर संकीर्तन के लिए सब व्यक्ति जाएंगे 3:30 बजे यहाँ से। तो आप सभी प्रोग्राम के बाद यहीं पर रुक सकते हैं और हमारे साथ नगर संकीर्तन में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में जन्माष्टमी अभी बहुत निकट है, 4, 5 और 6 को इस मंदिर में कार्यक्रम रहेंगे। 4 तारीख को 5 तारीख को और 6 तारीख को तीनों दिन कार्यक्रम रहेंगे। उनके शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है, आप शेड्यूल आगे नोटिस बोर्ड पर या फिर पैम्फलेट में हमें पढ़ सकते हैं। 4 तारीख को शाम को 5:30 बजे से भजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर 7:30 बजे से कथा प्रवचन होगा, उसके बाद 9 बजे महाप्रसाद। 5 तारीख को यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शाम को 5:30 बजे भजन कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा, 7:30 बजे से अभिषेक होगा, 9 बजे नाटक होगा ड्रामा, उसके बाद 10:30 बजे जन्माष्टमी के ऊपर कथा होगी और फिर 12 बजे श्री कृष्ण जन्म और महाआरती होगी।
हरे हरे कृष्ण। एक सूचना रह गई, 5 तारीख को सुबह 5 बजे मंगल आरती होगी। आप सबसे विनती है, श्री कृष्ण का जन्म है, आप कुछ भी कीजिए, मंदिर के पास आकर रहिए, दूर से आइए, रात भर जगिए, रात भर पैदल चलिए, जो करना है करिए, लेकिन सुबह 5 बजे आप यहाँ मंदिर में रहें ताकि श्री कृष्ण के दर्शन हो सकें। जो भक्त रुकना चाहें रात्रि को वो संपर्क कर सकते हैं बाहर, हम लोग व्यवस्था करेंगे उनकी। जो दूर से आते हैं वे लोग यहीं रुक सकते हैं ताकि वे लोग सुबह मंगल आरती करें, लेकिन प्रयास कीजिए 5 तारीख को सुबह 5 बजे यहाँ मंगल आरती में सब उपस्थित हों। हरे कृष्ण।
6 सितंबर उस दिन नंदोत्सव है और श्री प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस भी है, तो उस दिन शाम को 6 बजे से प्रभुपाद कथा होगी, उसके बाद 6:30 बजे से जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो रहे हैं उनके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, और शाम को 7:30 बजे प्रभुपाद जी का अभिषेक, 8 बजे पुष्पांजलि और 8:30 बजे महाप्रसाद होगा। और इसमें जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमारे मध्य रहेंगे वृंदावन के एक बहुत वरिष्ठ सन्यासी परम पूज्य वैष्णव स्वामी महाराज, तो वो भी यहाँ पर आकर लगातार 3 दिन कथाएं करेंगे। और अंत में जो बलराम जयंती का जो पीस था इसको जिस भक्त ने स्पॉन्सर किया है उनका नाम लेना चाहेंगे, उन्होंने बहुत सहयोग किया, उनके लिए प्रति हमारा आभार है। तो इस बार बलराम जयंती का जो पीस स्पॉन्सर किया है वह श्रीमान संजीव वर्णेकर प्रभु, अगर वो हैं तो यहाँ पर आ जाइए। उन्होंने अपने सुपुत्र नील माधव के जन्मदिन के अवसर पर ये पीस स्पॉन्सर किया है। हम सभी प्रार्थना करेंगे नील माधव प्रभु जी के लिए और संजीव प्रभु जी के लिए उसके परिवार के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रार्थना करेंगे जल्दी नील माधव पास बन जाए। अभी छोटा सा अभी भगवान की आरती होगी, दर्शन होंगे, आप सभी खड़े हो सकते हैं। हरे कृष्णा। एक और सूचना है, आरती के समाप्त होने के बाद ही राधा कृष्ण के जो विग्रह हैं वो अंदर से बाहर आएंगे, जो झूले वहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को झूला, वहाँ पर उनको विराजमान किया जाएगा और फिर आपसे भक्तों को इसका अवसर मिलेगा कि आप राधा कृष्ण को झूला दिला सकते हैं। हरे कृष्ण।
कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम